हरे कृष्णा। तो आज के इस 9 फरवरी के दिन, जिसे माघ महीने की अमावस्या, मौनी अमावस्या के दिन आपका इस संध्या सत्संग में स्वागत है। तो मौनी अमावस्या ये क्या है बताना आपको जरूरी है। भारत के साधु संतों में ये रिवाज है कि माघ अमावस्या को, जो मौनी अमावस्या कहते हैं, उसमें मौन रखते हैं। इस दिन अगर मौन रखेंगे तो सारे पापों का नाश होता है। अभी कल बताना था आपको ये, लेकिन कल हमारा ही मौन हो गया, क्या करें। लेकिन अभी बताएंगे तो अगली बार आएगा ना काम। तो साधु संत इसको मौनी अमावस्या कहते हैं। हर एक साधक के लिए मौन रखना बहुत आवश्यक है। कहते दिन भर नहीं तो कम से कम मध्यान्ह तक मौन रखना चाहिए। तो आइए हम समझ लेते हैं कि मौन का अर्थ क्या है। कुछ लोग मुंह से मौन रखते हैं और स्लेट पर लिख लिख के झगड़ा करते रहते हैं, उसे मौन नहीं कहते। मौन अर्थात अंतरंग मौन, अंतरंग मौन यानी हृदय से हम मौन हैं। और मौन का सूक्ष्म अर्थ यह है कि भगवान के विषय में आप चर्चा करेंगे तो वो मौनी है। मौन किसे रखना है आपको? प्रजल्प से मौन रखना है, दुनियादारी की चर्चा से मौन रखना है, और मुख से भी केवल भगवान नाम, भगवान कीर्तन यही करते रहेंगे तो भी वो मौन है। मौन का प्रत्यक्ष अर्थ है कि त्रिगुण में आने वाले विषयों के विषय में चर्चा नहीं करना, यानी सांसारिक बातों की चर्चा नहीं करना, स्वार्थी विषयों की चर्चा नहीं करना, और द्वेष, अहंकार, क्रोध इसके विषय में, इस पर, इसके प्रभाव से तो बोलना ही नहीं है। तो अगर मन में क्रोध है और मुख में शांति है, अच्छा है, लेकिन मन में ही क्रोध है एक नेगेटिव बात है। मन में क्रोध है लेकिन मुंह से नहीं बोल रहा, ये भी अच्छी बात है, बहुत सारे दुष्परिणाम टल जाते हैं उससे। लेकिन अगर जिह्वा पे भी मौन है, मन में भी मौन है, हृदय में भी मौन है, शांत, कोई विकार नहीं है, तो वो सही मौन है। और ये सब मौन रखते हुए मुख से भगवान नाम का चिंतन चल रहा है, मन से, हृदय से भी भगवान नाम का चिंतन चल रहा है, भगवान लीला का स्मरण चल रहा है, या आप श्रवण कर रहे हो दिन भर बिना कुछ बोले, तो भी सही मौन है। हम लोगों को हर जो आध्यात्मिक वस्तु है उसकी व्याख्या पता होना चाहिए। जैसे उपवास, कुछ लोगों को लगता है कि अमुक पदार्थ नहीं खाना, इसी को उपवास कहते हैं, और वो अमुक पदार्थ नहीं खाते हैं लेकिन जो नहीं खाना है उसके बारे में चिंतन करते रहते हैं, और कब मिलेगा, कब द्वादशी आएगी, और कब मैं वो खाऊंगा, द्वादशी का मेनू बनाते रहते हैं, तो वो उपवास नहीं है। उपवास का सही अर्थ है उप यानी निकट, और वास का मतलब रहना, भगवान के निकट रहने की तिथि है वो। इसलिए अन्न को ग्रहण करने के बाद उसको पचाने में बहुत शक्ति खर्च होती है। तो जब फलाहार करते हैं तो वो अन्न को पचाने की शक्ति बच जाती है, तो बची हुई की शक्ति का क्या करना है? भगवान नाम का अधिक जप करने के लिए, भगवत कथा का अधिक समय देने के लिए, निद्रा का परिणाम कम करने के लिए, क्योंकि अन्न खाने से क्या होता है, नींद आती है, उसका पूरा साइंस आपको मैंने बताया वो दिन, है ना। तो ये सारी ऊर्जा को बचाने के लिए उस दिन अन्न ग्रहण नहीं करते हैं, कोई निर्जला व्रत करते हैं, कोई सजला व्रत करते हैं, कोई सफला यानी फल खाकर व्रत करते हैं, और उसके बाद भी जमता नहीं है तो फिर साबूदाना खिचड़ी, कूटों के आटे की रोटी, पूड़ी, सामा की खीर, ड्राई फ्रूट डाल के, यह सब कार्यक्रम होता है। लेकिन वो शास्त्र में उसकी गिनती नहीं है, हम लोग कर लेते हैं। लेकिन अगर सेवा है तो ये सब खाकर भी उपवास करना है। लेकिन सही उपवास वो है कि काया वाचा मने भगवान का ही सेवा, भगवान का श्रवण, भगवान की कथा, भगवान की विषय में चर्चा, यही होना चाहिए। ऐसे कई प्रकार के शब्द हैं, वाक् प्रचार हैं, जिसका अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। मैंने उसे मैंने उस दिन बताया था, अगर आप डीटी वर्शिप कर रहे हैं, दीपक चला रहे हैं और किसी के प्रति क्रोध कर रहे हैं मन में कि आरती खत्म हो के जा उसको दिखाऊंगा तो वो भगवत पूजा करने से भी लाभ नहीं ना। भगवान आपके दीपक को नहीं स्वीकार कर रहे, दीपक को भी स्वीकार करते हैं, लेकिन दीपक से अधिक दीपक दिखाने के पीछे जो भावना है उसको स्वीकार करते हैं। इसलिए भक्ति का हर एक अंग और हर एक क्रिया बहुत अर्थपूर्ण है, बहुत शास्त्रोक्त है, कोई किसी के भावना के बनाया हुआ कपोल कल्पित नहीं है वो। तो हो सके तो याद रखना, माघी अमावस्या, वे माघ मेला समाप्त हो जाता है, माघ मेला यानी माघ यानी माघ मेला प्रयाग में लगता है और वो एक महीने तक चलता है। उसमें सब लोग त्रिवेणी में स्नान करने आते हैं और वो एक महीने में केवल वहाँ पर सत्संग, कथा, प्रवचन, कीर्तन, जप का नियम, कोई लोग दिन भर जप करते हैं, ऐसे बहुत सारे नियम लेकर वहाँ जाते हैं। केवल भक्तिपूर्ण कारणों कार्यों में ही अपने आप को पूर्णतः समर्पित करने के लिए ये माघ मेला होता है। और खुशखबर ये आपके लिए कि अगले साल माघ मेला कुंभ मेला है, महाकुंभ मेला होगा प्रयाग में। महाकुंभ, अर्धकुंभ, पूर्ण कुंभ होता है ना, तो पूर्ण कुंभ होगा वो जो 12 साल के बाद में आता है, वो अगले साल इलाहाबाद त्रिवेणी संगम प्रयागराज में है। तो उस दिन हमने भक्ति वेदांत नेत्र अस्पताल के नई बिल्डिंग में आपको बताया था कि मुझे बहुत सारी कहानी याद आ रही है, लेकिन समय नहीं है तो कल बताऊँगा। कल आया तो कुछ और ही बोल गया। आज मैंने निश्चय किया है कि मैं आज वही कहानी बोलूँगा जो मैंने आपको तय किया था। और मैंने चिट्ठी भी मेरे जेब में रखी थी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद चिट्ठी नहीं मिल रही है, आखिरी चांस है इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर भी नहीं है, लेकिन स्मृति में है चिट्ठी मेरी वो तो वो कथा याद आई थी कि हम जब भी जगह ढूँढ रहे थे इस अस्पताल के लिए, तो वो जगह ढूँढते ढूँढते हमको संकेत गांव में जगह मिली, मतलब देने वाले लोग दान में 2 बीघा, इसका मतलब कितना होता है 1.2 एकर्स। तो हम जगह देखने गए तो वो जगह का जो रास्ता था वो एक सरोवर के पास में से गुजर रहा था, तो कभी हमने देखा नहीं था। तो हमने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये प्रेम विवल कुंड है और यहाँ पर प्रेम विवला देवी का भी मंदिर है। तो हमारी कुतूहल तो जागृत होता है ना, हमको हर पवित्र स्थान की कथा जानने की बहुत इच्छा होती है। तो उन्होंने हमको ये कहानी बताई जो मुझे अभी भी किसी भी ग्रंथ में नहीं मिली, बहुत ढूंढा मैंने, बहुत बोनाफाइड ग्रंथ में भी ढूंढा, लेकिन सारे तीर्थ और सारे पवित्र स्थान ग्रंथों में मिलेंगे ऐसा नहीं है, और सारी जो कथाएँ हैं वो भी ग्रंथों को मिले में ऐसा नहीं है। एक कथा का वैसे ही योग्य यानी बोनाफाइड नाम है, वो है लोकवदंती। लोकवदंती का अर्थ क्या होता है कि जो लोक वहाँ के हैं वो बताते हैं, इसको कहते हैं फोक टेल्स। फोक टेल का मतलब जो वहाँ के स्थानिक लोग हैं वो बताते हैं वो कहानियाँ, बड़े बुजुर्ग लोग बताते हैं, फिर अपने बच्चों को बताते हैं, फिर अपने बच्चों को बताते हैं, फिर लोगों को पता चलता है। तो आप समझ लो कि लोकवदंती है। तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर राधा रानी शुक्रवार के दिन अपने माता के आदेश के अनुसार आगे बैठो, आकर आगे आके बैठो। तो शुक्रवार के दिन अपनी माता के, मैं सबको अलग अलग से नहीं बताऊंगा, एक बार ऐसा किया तो सब लोग को आगे आना चाहिए। शुक्रवार के दिन अपनी माता की इच्छा के अनुसार देवी की पूजा करने के लिए राधा रानी अपने घर से निकली और वो देवी ढूंढ रही थी नंदगांव के रास्ते में, तो कोई देवी नहीं मिली, तो बीच में कन्हैया मिले और कन्हैया ने बोला कि कहाँ जा रही हो इतनी ऐसे लगभग यानी बड़ी तेज़ी से जा रही हो। फिर नहीं, देवी की पूजा करनी है, मैया का आदेश है। तो वो उन्होंने कहा, उस समय वो आज का जो प्रेम विवल कुंड है वो संकेत नाम का गांव है ना, संकेत नाम का गांव का अर्थ क्या है, जहाँ राधा रानी और कृष्ण अलग अलग रूप में मिलते हैं, छुप छुप के मिलते हैं या अलग रूप में मिलते हैं और संकेत करते हैं कि कहाँ मिलना है। वहाँ पर भी मिलते हैं लेकिन कभी वहाँ आकर संकेत देते हैं कहाँ मिलना है, इसका नाम संकेत है, संकेत स्थली, संकेत गांव। तो ये संकेत गांव है, बीच में से रास्ता जाता है नंद गांव का, तो संकेत गांव का सारे मंदिर इस तरफ है, इस तरफ संकेत गांव है, उधर वो कुंड है। तो उन्हें कहा कि मैं अभी से अंदर से आ रहा हूँ, यही देवी है। तो उसको बड़ा अच्छा लगा कि भाई अच्छी तरह से मालूम पड़ा, नज़दीक ही है बहुत, यहाँ से 3.5 किलोमीटर है। और वो अंदर गई, वो पूरा जितना भी बहुत सारा ज़मीन है उधर, बहुत एकड़ ज़मीन है, पहाड़ भी है, सब ढूंढा चप्पा चप्पा, फिर रोड पे आ गई। तो कृष्ण वहीं खड़े हैं, बोल रहे मिली देवी, आप देवी मिली आपको? तो राधा रानी कहती है नहीं मिली, पूरा जगह देख के आए। अरे क्या कह रही हो, अभी तो मैं देवी का दर्शन करके आ रहा हूँ, जाओ उधर ही है देवी। तो दोबारा अंदर गई, क्यों गई, बहुत भोली भाली है। वो तो चालाक होती तो कहती मैंने सब कुछ देखा हुआ है, मुझे नहीं मिली है, मैं नहीं जाऊंगी अंदर, मैं दूसरी जगह जाऊंगी। कि कृष्ण भी कह रहे हैं और राधा रानी भोली वाली भी है, नम्र भी है, उद्दंड नहीं है। तो बेचारी दोबारा गई, दोबारा पूरा सब देखा उन्होंने, पूरा जगह जगह छान मारा, पहले भी गई थी, दोबारा देखा, दोबारा भी नहीं मिली। बाहर आए तो फिर कृष्ण मिले और अचंभित होके पूछ रहे हैं कि नहीं मिली? तो नहीं मिली, कैसी हो तुम? मैं कह रहा हूँ ना अभी दर्शन करके आया हूँ, मैं थोड़ी झूठ बोल रहा हूँ। तो फिर चली गई अंदर तीसरी बार, और तीसरी बार ना जैसे ही अंदर गई वैसे देवी मिली उनको। तो यहाँ ऐसे कैसे बावड़ी है गए, मैं इतनी सामने ही देवी थी और मैंने कैसा दर्शन नहीं किया उसका, आश्चर्य तो होता है ना। झट से मिली एकदम, आज भी वो झट से ही मिलती है। तो तुरंत अपना प्लेट जो है ढका हुआ था खोला, उसको अगरबत्ती धूप जलाया, दीप जलाए, सब रेडी किया, सब कुछ किया और आरती शुरू की, धूप जलाया, बड़े प्रेम भक्ति भाव से, शुक्रवार का दिन है, देवी का वार है, चल रहा है पूजा। इदम दीपम ओम देव्यै नमः, इदम धूपम ओम देव्यै नमः, बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। अचानक जब दीपक की आरती हो रही है तो श्री कृष्ण उधर रोड पे खड़े हैं ना, वो वेट कर रहे हैं और राधा रानी यहाँ देवी की पूजा कर रही है। तो अचानक देवी ना आँख मीचती है और हंस पड़ती है, समझ में आपको आया, हंस देती है और आँख ऐसे पलक मीच देती है। तो देवी को हंसते हुए देखकर राधा रानी भी हंस जाती है, अरे वाह देवी मेरी सेवा से बड़ी प्रसन्न है। आरती चलती रहती है आगे, लेकिन फिर देवी जो ज़्यादा ही हंसने लगती है, वो ज़्यादा ही आँख मीचने लगती है, देवी को अभी कंट्रोल नहीं हो रहा है। फिर पता चलता है देवी और कोई नहीं, श्याम सुंदर जी है, झट से वहाँ पर रूप बदल करके खड़े हो गए। तो क्योंकि जब देवी हंसी तो राधा रानी प्रेम से विवल हो गई और राधा रानी के प्रेम विवल, विवल का अर्थ क्या होता है, कुछ ट्रांसलेशन है क्या विवल का, विवल होना मतलब प्रेम से, हाँ भाव विभोर या हाँ गदगद गदगद हो गए, व्याकुल हो गए, लेकिन पॉजिटिव में, नेगेटिव में नहीं। व्याकुल का वर्ड जनरली नेगेटिव मतलब विरह में ऐसा करते, लेकिन वो प्रेम में व्याकुल हो गए, तो वो भी विवल हो के उन्होंने भी आंखें मिची और उन्हें और हंसने लगे। और फिर जब राधा रानी को पता चला कि ये श्याम सुंदर जी हैं, देवी बनकर आए हैं, तो उनके आंखों से प्रेम विवलता में अश्रु आए। अच्छा लगा उनको बहुत, वाह ये भी क्या बात है, वाह बहुत सुंदर। तो उनकी आंखों में प्रेम के आंसू देकर हमारी देवी भी रो पड़ी, तो उस देवी का नाम पड़ा प्रेम विवला, विवला देवी, प्रेम विवला देवी। पुरुष को प्रेम विवल कहते हैं, स्त्री को विवला कहते हैं। तो वो देवी अभी भी वहां खड़ी है, लेकिन वो कृष्ण है, देवी नहीं है। तो दोनों के जो आंसू बहे वो मिलकर वो कुंड हो गया तैयार, प्रेम विवल कुंड। बहुत सुंदर स्थान है वो, कभी हम देखते हैं जल नहीं रहता है, कभी बहुत जल रहता है, अलग अलग सीजन में अलग दर्शन है उसके। ये पूरा भला हुआ जल भी हमने देखा हुआ है। जब पहली बार गए थे तो कुछ जल नहीं था, खाली ऐसा ही क्या कहते हैं उसको, ऐसा क्या कहते हैं उसको, पुराने स्थल को क्या कहते हैं, जीर्ण शीर्ण अवशेष थे उसके। फिर थोड़ा सा उसको बनाया गया और फिर वो अभी बनाया नहीं पूरा गया, लेकिन अच्छा है बहुत। वहीं पर यही ज्ञान भी मिला हमको, वहाँ पर एक नीलगिर का पेड़ था, तो नीलगिर का पेड़ बहुत औषधि होता है ना, मैंने भी इसमें नीलगिर का तेल लगाया है, उसका सांस ले रहा हूँ। लेकिन मुझे बताया गया कि नीलगिरी के पेड़ के नीचे सोना नहीं चाहिए कभी, नीलगिरी के पेड़ के नीचे सोने से बीमारी हो जाती है। नीलगिरी का पेड़ कभी भी खेत में लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सारा पानी अपने आप और खींच लेता है। नीलगिरी का पेड़ वैसे देखा जाए बहुत स्वार्थी है, सब पानी छीन लेता है, उसको खूब पानी चाहिए, अपना तेल बनाने के लिए पत्ते बनाता है वो। ये भी नॉलेज वहाँ मिला। और हम देखते हैं वहाँ पर, कभी भी आप जाओ, एक बड़ा कुआं है वहाँ पर, बहुत बड़ा, मतलब सारे नवयुवक बालक ठंड के मौसम में लंगोटी पहनकर बकेट बकेट भर के स्नान करते हैं ओपन एयर में। हम उनको बोलते हैं कैमरा खोलकर और करो और करो, तो बड़े उत्साह के साथ और बाल्टियां निकालते रहते हैं। हम वहाँ गए थे ना कल, कहाँ पर, करेला गांव में गए थे, वहाँ पर भी एक छोटा सा बालक जो है खुद बाल्टी निकालकर कुएं से स्नान कर रहा था, बहुत आनंद से। हमने जितनी बार कहा उतना बाल्टी डाला उसने अपने ऊपर। ब्रज में बहुत आनंद है और बहुत स्वाभाविक और प्राकृतिक आनंद है। तो हमारे यहाँ पर कैसे बच्चों को क्या क्या चाहिए आनंद प्राप्त करने के लिए, वो ऑटोमेटिक खिलौने चाहिए, ऑटोमेटिक कार चाहिए, रिमोट वाली कार चाहिए, क्या क्या चाहिए उनको, उसके बिना आनंद नहीं आता है। यहाँ पर गिरे हुए कदम के फूल को लेकर या गिरे हुए किसी हार्ड फल को लेकर दिन भर खेलते रहते हैं, कैच कैच खेलते हैं, कहीं कहीं उठा देते हैं उसको, पतंग उड़ाते हैं, कुश्ती खेलते हैं, जल में 50 बार कूद लगाते हैं, ये सब शास्त्रोक्त गेम्स हैं। कुश्ती खेलना, स्विमिंग करना, पानी में युद्ध करना जल के साथ, गुल्ली डंडा खेलना, गेंद खेलना, ये सब बोनाफाइड गेंद है, गेम्स है। श्री नाथ जी, नाथ यहाँ पर नाथ जी भगवान प्रकट हुए ना, गोपाल जी, तो गोपाल जी अपने 8 सखाओं के साथ रोज गुल्ली डंडा खेलते थे। तो कैसा होता है ना गुल्ली डंडा गेम, जानते हैं ना आप, आपने खेला है गुल्ली डंडा गेम? हाँ अच्छा है, जो खेला है वो भाग्यवान है, नहीं खेला वो बहुत दुर्भाग्य है, क्योंकि वो भगवान ने खेला हुआ गेम है। तो आपके ऊपर जब ये राज्य आता है तो आप फील्डिंग में रहते हो और दूसरे के हाथ में गुल्ली डंडा रहता है, वो ऐसा उड़ाएगा और एक बार मारेगा तो 1, ऐसा उड़ाएगा टक टक करके 2 बार मारेगा तो डबल मार्क, और उड़ाएगा और टक 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 ऐसा करेगा तो 3 गुना मार्क मिलेंगे, और उसको कैच करना है दूसरे वाले को। तो अगर कैच किया तो तुम आउट, फिर तुम्हारा पारी आएगी, वो राज्य करेगा, मतलब वो लेगा, पकड़ने के लिए खड़ा रहेगा, ऐसा 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 करेगा पकड़ने के लिए, लेकिन वो उसको बचा के मारेगा, और पकड़ने वाला भी आएगा तो ऐसा मारेगा कि हाथ को लगेगा इतना जोर से कि वो छोड़ ही देगा उसको। वो शार्प होती है वो दोनों तरफ से, हम अपने हाथ से बनाते थे उसको पूरा लकड़ी लेकर, सेल्फ मेड गुल्ली यानी बीटी बीटी और डांडू, लगोरी भी भगवान खेलते थे, आबादोबी भी खेलते थे। पता है आबादोबी क्या होता है? वो गेंद होती है जो हम लोग पुराने मोजे में चिंदी डालकर अपने हाथ से बनाते थे, बहुत बढ़िया होता था वो। और फिर क्या होता था, कभी टेरेस पे खेलते थे उससे, बहुत जोर शोर शॉट मारते थे तो सीधा टेरेस को पार करके वो नीचे रास्ते पर गिरता था, और रास्ते में गटर पे गिरता था। फिर हम लोग किसी को ऊपर से तो वो ऐसा निकालता था और बहुत जल्दी ऊपर फेंकता था। फिर उसके बाद में उस गेंद से हम क्रिकेट नहीं खेलते थे, उसको लेकर दूसरों को मारते थे, तो सभी के शर्ट पर पीछे से धब्बे आते थे गटर के। और फिर वो होने के बाद में घर में वो गेंद लेके जाते थे, अच्छी तरह धोते थे और दिन भर सुखाते थे, वापस शाम को वही गेंद क्रिकेट के लिए तैयार रहती थी। उसको कहते हैं आबादुबी। और गुल्ली डंडा में क्या होता है, एक बार हार गया ना, तो एक बार क्या हुआ, श्रीनाथ जी भगवान और उनका एक सखा गुल्ली डंडा खेल रहे थे, और हमारे कृष्ण बहुत चालक हैं, जब उनकी बारी थी तो उन्होंने अच्छी तरह खेला, और बीच में एक बार सखा ने पकड़ लिया वो गुल्ली को, तो अभी सखा की बारी है ना, तो श्रीनाथ जी अदृश्य हो गए, सीधा मूर्ति बन गए जाके मंदिर में, है ना, इसी को चालाकी कहते हैं। तो वो सखा को बड़ा गुस्सा आया, प्रेम भरा गुस्सा था, लेकिन अरे ऐसे कैसे खेलते हो तुम और ऐसा छोड़ के चले जाते हो हारने के बाद, हमारा दाव कौन करेगा। तो फिर सीधा गुल्ली लेके आता है और श्रीनाथ जी को गुल्ली लेके मारता है जोर से क्रोध में। तो जो पुजारी जी है ना गोकुलनाथ जी, बड़ा गुस्सा आता है, पकड़ता है उसको सखा को, उसके पिताजी को बुलाता है, इसको आज से मंदिर में लाना बंद। तो ठाकुर जी को वो सुनकर बड़ा दुख होता है कि गलती मेरी थी, मैंने जो गुस्ताखी की चालाकी की और दंड मेरे दोस्त को दिया जा रहा है। तो शयनार्थी समय वो जो पुजारी थे वल्लभाचार्य के पुत्र हैं, वो उनको बताया, देखो आज हमने खेल खेल में उसको चीट किया, उसका जब समय आया तो हम भाग गए, उसका दंड उसको मत देना। तो अगले दिन स्वयं तो वो क्या बोला सखा कि ठाकुर जी ने मुझे ऐसा बताया, बोले जब तक आके वो कल मुझे नहीं मिलेगा और मैं स्वयं उसको दंड नहीं दूंगा तब तक मैं मेरा क्रोध शांत नहीं करूंगा, आप जो चाहे दंड दो मुझे। क्योंकि गोस्वामी जी समझ में आया कि बड़ा बड़ा महान भक्त है ये, एकदम नम्रता से उसको बोल रहे हैं, इसका क्रोध अभी भी जारी है। तो फिर अगले दिन ठाकुर जी प्रकट हुए खेल खेल में और फिर वो गुल्ली डंडा उसको दिया, और बहुत देर तक उसने भगवान को चकमा दिया। आप खेले बताओ का पता चला है चकमा कैसे देते हैं, वो ऐसा ऐसा खड़ा रहेगा ना तो उधर मारना है, उधर ऐसा खड़ा रहेगा तो इधर मारना है, और अगर वास्तव में उल्लू बनाना है तो उसको उड़ाना है और एक बार टक करना है, देखना वो किधर है, दूसरी तरफ मारना है। डबल मार्क भी मिलेंगे और जगह भी मिलेगी, ऐसा है। तैसे अभी मेरा मार्ग भटक रहा है, मैं एक कथा सही बोली आपको लेकिन दूसरी कथा मैं कहीं और जा रहा हूँ, कोई बात नहीं। चतुर्भुज दास की कथा बताई क्या आपको मैंने, वो कुंभन दास जी के बेटा थे, कुंभन दास जी है ना, वो भी अष्ट सखा में से एक है, और कुंभन दास जी बड़े भक्त थे भगवान के और बड़े बुजुर्ग थे, 80-85 साल के थे। इधर एक गांव है छाता के रास्ते पर, यमुनावतो वो और तो एक साथ में है, उस गांव में उसका घर था कुंभन दास जी का, और वहाँ से भगवान उसको खेलने के लिए लेके जाते थे श्रीनाथ जी भगवान। तो एक दिन ना बीच रात में श्रीनाथ जी भगवान आए, सब शयन वहन सब हो गया उसका, रात में प्रकट होकर आए और कुंभन दास को जगाया, उठो। बोले तो क्यों क्या हो गया, तो चलो माखन चोरी करने जाना है बीच रात में। हाँ पर बीच रात में क्यों लेके जा रहे हो, कल सुबह जाएंगे ना। बोले नहीं वो अभी ये कलयुग की कहानी है, ये श्रीनाथ जी महाराज कलयुग में आए हैं, ये बोले अपने माधवेंद्रपुरी है ना, माधवेंद्रपुरी वो आज से चैतन्य महाप्रभु के कुछ ही समय पहले आए, यानी 50 साल पहले हो सकता है, यानी 1401-1410 ये इस समय होगा उसका, ज़्यादा समय नहीं हो, कितने साल हो गए, हाँ 600-700 एटमोस्ट। तो वो तो कृष्ण का समय तो नहीं है ना, वो अभी का समय चल रहा है। वो तो कहते हैं कि वो जतिपुरा में ना एक बूढ़ी मैया है, बूढ़ी गोपी है, वो रोज जब मंथन करती है ना दही का, तो मन में प्रार्थना करती है कि कन्हैया आके मेरा दही दूध खाए, आओ कन्हैया तुम्हारे लिए बना रही हूँ, और इतने प्रेम से पुकारती है कि मुझे अभी रहा नहीं जाता है, उसकी इच्छा पूरी करने की मेरी इच्छा है। तो रात में क्यों जा रहे हो, रात में जाने में आनंद है ना पूरा, क्योंकि जब उसको क्या पता है कि गोपियों के घर भगवान चोरी करके खाते थे, मुझे भी उस वही आनंद उनको देना है, जाके मांगूंगा दे देंगे तो उसको भी इतना आनंद आएगा मुझे भी आएगा, लेकिन मैं जब चोरी करके खाऊंगा तो उसको भी ज़्यादा आनंद आएगा, इसलिए रात में जाना है। फिर भी वो मना कर रहे हैं, सब समझा रहे हैं भगवान ने, बोले देखो ऐसा है कि मैं तो आऊँगा लेकिन मैं बहुत बुढ़ा हूँ, तुम तो जवान बालक हो, कहीं से भी कहाँ कूद सकते हो, यहाँ से वहाँ पेड़ से पेड़ के ऊपर पेड़ पेड़ करते जा सकते हो, और मैं पकड़ा जाऊँगा तो मैं तो चल भी सकता नहीं है, तो पिट कौन जाएगा, मैं ही पिट जाऊँगा। बोले कोई बात नहीं, मैं आपको ना सावध रखूँगा, आप चिंता मत करना, आपकी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है, आप चलो। अभी भी प्रेमी कन्हैया जी बोल रहे हैं, सखा बोल रहे हैं, तो चले फिर बीच रात में नींद से उठा के चले, और ऐसे ना उसको भी पेड़ पे चढ़ाया, पेड़ पे चढ़ाया, ठाकुर भी पेड़ पे चढ़े, और वो जो गोपी यानी जो भी बुढ़िया गोपी थी उसका छत जो था ना कौलारू, कौलारू ने क्या क्या कहते हैं हिंदी में कौल को, वो होते ना टाइल्स मैंगलोर में बनती है, वो कौल उन्होंने निकाले ऊपर से जाके, बल्कि वहाँ निकाले जहाँ पर वो लटका हुआ मटके का मटका था, दही का दूध का अपना मक्खन का। ध्यान से सुनो, अभी आप ऐसे जाकर घर के ऊपर से अंदर इनफ निकाल के 4-5 टाइल्स वहाँ से प्रवेश कर रहे हैं। ठाकुर जी ने क्या किया, वो उसी के सहारे उतरे, मतलब जहाँ पर लटका हुआ था उसी को पकड़ के लटके उसके ऊपर, और इनको हाथ पकड़ के जमीन पर बिठा दिया, क्योंकि बूढ़ा आदमी दो कैसे मटके पर लटकेंगे, तो ये मटके पर लटक गए, और अभी अंधेरा है पूरा, लेकिन ठाकुर जी का अपना खुद का प्रकाश भी है, तो उसमें ये अभी माखन खाने में लगे हुए हैं। अभी आप लटकेंगे तो माखन कैसे खाएंगे बताओ, आप बताओ थोड़ा, आपको भी लीला में समावेश करना ज़रूरी है ना, सब बता जाऊँगा तो आप ऐसे ही सुनते नहीं, नहीं कैसे, अभी आप लटक रहे हो ना, तो लटके हुए माखन कैसे खाएंगे, हाँ एक हाथ से लटकेंगे है ना, देखो उसको पता है, एक हाथ से लटकेंगे फिर एक हाथ फ्री हो गया ना, लटकने की शक्ति चाहिए, लेकिन लटकेंगे फिर उसके हाथ से खाएंगे ऐसे। ठाकुर जी ने खाना शुरू कर दिया और कुंभन दास को बड़ा आनंद आया, बढ़िया, ठाकुर जी को माखन चुराते देखना बहुत आनंद की बात है, बहुत देर तक खाते रहे खाते रहे। फिर क्या हुआ बताया आपको, फिर वो अभी लटके हुए हैं ना, मतलब पूरा हवा में है, एक हाथ पे कितना देर रहेंगे, तो उनका जो धोती का हमारा होता है ना पीछे, क्या उसको बोलते हैं भाई पता नहीं मुझे, वो पीछे हम डालते हैं ना पीछे से, नौवारी औरतें डालते हैं ना पीछे से, वो उनका ढीला हो गया और वो निकलने लगा। अभी वो निकलने लगा तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा ना, अभी माखन खाना छोड़ना भी नहीं है, इतना माखन प्रिय है, इतना माखन प्रिय है कि ऐसा स्वादिष्ट प्रेम से बनाया वो माखन, खाना खाने छोड़ देना और फिर वो कैसे बांधेंगे बताओ, एक हाथ तो लटका हुआ है, एक हाथ माखन से भरा हुआ है, कौन से हाथ से लगाएंगे उसको वापस, प्रॉब्लम हो गया ना अभी। फिर क्या किया उन्होंने पता है आपको, कुंभन दास जी जमीन पे है, वो ऐसा ऐसा करके भी उसको नहीं ठीक कर सकते तो कुंभन दास जी देख रहे हैं कि ठाकुर जी की समस्या हो रही है, और वो भी सोच रहे क्या करूं, लेकिन माखन खाना छोड़ नहीं रहे, तो कुंभन दास के आंखों के सामने ठाकुर जी के पार्श्व खंधे से, खंदा आइए भी खंदा है ना, लेकिन पीछे भी खंदा है, पीछे के साइड से दो हाथ निकल आए, ऐसे पीछे गए, दो हाथ अपना काम कर रहे हैं, एक हाथ से पकड़ा हुआ है एक हाथ से खा रहे हैं, और दो हाथ पीछे गए, वो छूटा हुआ जो है वापस अच्छा टक किया उसको, फिर दो हाथ वापस कंधे में गायब हो गए। समझ में आया ना कुछ आपको, यानी कुछ समय के लिए भगवान चतुर्भुज बने, विष्णु नहीं बने लेकिन चतुर्भुज जरूर बने। तो ये देखकर ना कुमुदा को जोर से हंसी आई, आएगी ना आपको भी आई ना, आएगी ना हंसी। अरे ठाकुर जी ने कितने अद्भुत तरीके से अपना धोती का हिस्सा बांधा। तो जोर से जब हंसे तो बुढ़िया उठी, तो बुढ़िया उठी तो उसने दीपक जलाया, ट्यूबलाइट नहीं जलाया, कौन सा दीपक जलाया बोलो, पंती। पुराने जमाने में ट्यूबलाइट नहीं था, वो पंती कंदील वही हुआ करता था, उसमें ऐसा ऐसा करके ऐसा करके। तो वो जला के वो लेकर आई, हाँ दीपक बाती को ऊपर करके जला कर लेके आया अंदर। तो उसको देखते ही ठाकुर जी ऊपर के होल से गायब हो गए, और बेचारा बुड्ढे को भागना था लेकिन वो भाग नहीं पाया। तो माता जी ने डंडा लेकर ऐसा पीटा उसको, ऐसा पीटा, और ठाकुर जी छत पे खड़े रहकर होल से देख रहे हो, ताली बजा रहे, मतलब मजा मजा आ रहा है। तो वो चिल्ला रहे कि मैंने कहा था ना कि तुम ऐसा ही करोगे, मुझे ही पिटवाओगे और खुद मजा देखोगे। तो माता जी को लगा कि बहुत ढोंग कर रहा है बुड्ढा आदमी, यानी ऐसा दिखा रहा है कि मैं निर्दोष हूँ और किसी को बता रहा है कि मैं निर्दोष हूँ, जैसे कि भगवान को बता रहा है कि भगवान आपने मुझे पिटवाया। लेकिन चोर तो वही है, क्योंकि बालक को तो दिखा नहीं था उसने, हो सकता है लाइट लात लगाते ही छलांग मारी होगी उसने, लेकिन भाग नहीं पा रहा है, बहुत पीटा उसको, फिर कैसे भी करके छूट के आया हूँ। बहुत नाराज आया भगवान से, भगवान ने बहुत ताली बजाई, देखिए बोल नहीं पाया, रूठ के घर पे जाके सो गया। लेकिन वो चतुर्भुज भगवान की जो छवि थी, जो दर्शन था, उसको उसके मन को इतना भा गया, वो इतना मोह लिया था कि क्रोध में भी उसको बार बार वही छवि याद आ रही थी, बहुत सुंदर छवि जिसमें चार हाथ बने हुए हैं। तो उसी अवस्था में उसकी पत्नी गर्भवती हो गई, उसी चिंतन में। और जब बालक का जन्म हुआ तो उसने बालक का नाम रखा चतुर्भुज दास, जिस चतुर्भुज के विचार से चिंतन से वो गर्भवती हुई उसकी पत्नी। बड़ी बुढ़िया अवस्था है, तब बालक नहीं था, ठाकुर जी को उनको बालक देना था, अपने भक्त को जन्म देना था। और ये चतुर्भुज दास भी अष्टछाप में से एक है, ऐसे ही भक्तों की कहानी है। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, 180 साल के बुढ़े को भी बालक दे सकते हैं, उनकी इच्छा है तो क्या नहीं हो सकता है। और हम सोचते हैं कि बालक इसी मार्ग से होता है, अरे बालक आशीर्वाद से भी होता है, कुछ प्रेगनेंसी की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। वे कुंती पहली बार प्रेग्नेंट नहीं हुई थी, एक्चुअली वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुई, हर बार एक देवता आए मंत्र बोला सीधे हाथ में बालक रेडीमेड, नो तकलीफ ऑफ 9 मंथ्स। पहली बार भी ऐसा ही हुआ, पहली बार तो वो कर उन्होंने कहा कि अगर अगर जिस मार्ग से बच्चा आता है उस मार्ग से आएगा तो मेरा कौमार्य भंग हो जाएगा, मैं कुमारी का नहीं रहूंगी। तो थोरिय देव ने कहा कोई बात नहीं, आपका कौमार्य बनाए रखकर आपको बालक मिलेगा, आपके कान से आएगा वो, तो कान से आएगा बालक तो आपका कान फट नहीं जाएगा, चिंता मत करना, कान वैसे ही रहेगा, बालक आ जाएगा। और उसी क्षण हाथ में बालक आया कान से, तो उसका नाम रखा कर्ण। सो ऐसे बालक को, भगवान को अगर किसी को बालक देना है तो वो दे सकते हैं दिव्य तरीके से। स्वयं व्यासदेव को जन्म देना था भगवान को, तो पराशर मुनि यहाँ वृंदावन में जमुना जी में आए विचार करते करते, और सत्यवती तभी वो नाव चलाती थी, हाँ दासराज की बेटी, तो वो नाव में बैठे और पल्ली पार जाने के लिए उन्होंने सोचा कि वहाँ जाएंगे। तो नाव को जब भी वो नदी के बीच में लेके गई तो इनको प्रेरणा हुई, ऐसे संकेत हुआ कि भगवान का कोई दिव्य जीव अभी जन्म लेने वाला है, वो भी मेरी ओर से यानी मेरे तरफ से, लेकिन उसके लिए स्त्री की आवश्यकता है, अभी यहाँ पर मैं कौन स्त्री ढूँढूँ, तो सामने ही स्त्री बैठी है जो नाव चला रही है। तो वो भगवान की सेवा के लिए कोई संकोच नहीं किया उन्होंने, आपको लगेंगे अरे पराशर मुनि इतने निर्लज्ज कैसे, ना जान ना पहचान, सीधे कह रहे हैं कि मेरे बच्चों की माँ बनोगी क्या। तो उन्होंने कहा कि भगवान से मुझे संकेत हो रहा है कि आपको मेरी ओर से अभी एक दिव्य बालक जन्म लेगा, आपकी तरफ से, आप मेरी और आपकी तरफ से। तो उसके पिताजी ने उसको नाव चलाने के लिए क्यों कहा था, क्योंकि इसके शरीर से ना चारों तरफ एक एक कोस तक 2.5 किलोमीटर तक, हाँ 2 मील और कितने किलोमीटर होते पता नहीं, 4.5 किलोमीटर आई डोंट नो, उतने किलोमीटर चारों ओर उसकी मत्स्य गंदा, मछली की गंदा आती थी उसको जन्म से ही, पता नहीं कैसा कर्म था उसका। तो पिताजी भी बड़ा शास्त्रोक्त और बहुत भक्त थे, उन्होंने कहा तुम एक काम करो, जमुना जी में नाव लेकर चलाया करो और संतों को आर पार कराया करो, इस पार उस पार करो, संतों के आशीर्वाद से एक दिन आपका ये दुर्गंध जो है वो नष्ट हो जाएगा। तो जब भी पराशर मुनि ने उस पवित्र घड़ी में उसको संकेत दिया कि, तो कह रहे मैं तैयार तो हूँ लेकिन मेरी 3 समस्याएं है, एक तो मेरे शरीर से ये दुर्गंध निकलती है, वो शायद बालक को जन्म देंगे तो उसको भी आ सकती है, क्या पता। दूसरी बात है कि हम नदी में है, जलाशय में है, जल प्रवाह में है, आप लोगों को पता नहीं तो बता दूं, जल प्रवाह में कभी भी पति को पत्नी को प्रेग्नेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही भयंकर पाप है वो। अगर आप पति पत्नी होंगे तो भी जल में गर्भधारणा नहीं होनी चाहिए, जमीन पर घर में एकांत में होनी चाहिए, तो हम तो जल में हैं। तो तीसरी समस्या यह है कि हम ओपन एयर में हैं, यहाँ पर भी लोग हमको देख रहे हैं, इधर भी लोग देख रहे हैं, दोनों किनारे से लोग देखते हैं और देख सकते हैं, और ऐसा कुछ होगा तो ज़्यादा कुतूहल से देखेंगे क्या हो रहा है। तो पराशर मुनि ने उनको आशीर्वाद दिया कि ये सेवा करने को आप तैयार हो तो आपके शरीर से मत्स्य गंध जो है वो नष्ट हो जाएगा और एक एक कोस तक आपके शरीर से उसके बदले में सुगंध फैलेगा, जैसे द्रौपदी सुगंधित थी ना, एक एक कोस तक उसके शरीर से सुगंधित नेचुरल था, उसके अंदर कोई बदबू नहीं थी, जितना पसीना बहाएगा उतना खुशबू बांटेगी। तो ऐसे आपके शरीर से एक एक कोस तक सुगंध फैलती रहेगी। रही बात जल की, हमको टापू चाहिए यानी जमीन चाहिए ना, तो मैं अभी अपने मंत्र शक्ति से इस नदी में एक बेट बना देता हूँ, टापू यानी आइलैंड। तो आप बोट से उतरना और हम टापू में जाएंगे, फिर आपको गर्भधारणा कराएंगे। और रही बात अभी लोगों को देखने की, तो कहेंगे आप ऐसा मंत्र शक्ति से बादल बनाएंगे चारों ओर आपके, हमारे दोनों के, कि किसी को कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, ऐसा एक भूल भुलैया बना देंगे, आप उसको धुआं कह सकते हैं, आप उसको बादल कह सकते हैं, आप उसको कोहरा कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो उन्होंने झट से सत्यवती का शरीर से खुशबू आने लगी, तो उसका प्रमाण मिला, उसको श्रद्धा निर्माण हो गई, झट से टापू निर्माण किया, टापू पे चले गए और वो यहाँ वहाँ देख रही थी, उतने में वो कोहरा छा गया चारों तरफ। फिर आपने सोचा होगा अंदर कोहरे में उन्होंने हम जैसा करते हैं वैसा किया होगा, नहीं, मध्यमा उंगली ना, वो मध्यमा उंगली से उसके नाभि को स्पर्श किया और कुछ मंत्रों का उच्चारण किया, जैसे मंत्रों का उच्चारण किया उसके गर्भ से सीधे बालक प्रकट हो गया। अभी वो पेट लेके घर जाएगी, ये 9 महीना रहेगी, पिताजी को बताएगी, दुनिया भर को पूछेगी क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन था वो, कितना संकोच है, और दिव्य विभूति का जन्म ऐसे ऐसे संकोच में नहीं हो सकता है। तात्काल बालक का जन्म हुआ, सांवले रंग का, जैसे कृष्ण का रंग है, और वो सिद्ध अवतार थे भगवान के, ज्ञान के अवतार थे। तो जन्म होते ही बालक है ना 16 साल का हो गया, उसको सिद्ध अवतार कहते हैं। सिद्ध अवतार और कौन है बताइए, सुखदेव गोस्वामी, वो 18 साल के हो गए जन्म होते ही, 16 या 18 साल के हो गए। और कौन है, वामन देव, जन्म होते ही 8 साल के हो गए, उसी दिन जनेऊ संस्कार हुआ, उसी दिन भृगु कच्छ यानी भरूच गुजरात में जहाँ पर बलि का यज्ञ चल रहा था वहाँ पहुँच गए, उसी दिन लीला समाप्त हुई। एक दिन में जन्म, मुंज, उपनयन संस्कार, सब आशीर्वाद, मंत्र पूजा सब कुछ होके उसी दिन बलि का गर्भवरण किया, उसी को वरदान दिया और उसी दिन उसके साथ सुतल लोक चले गए। और कौन है, कपिल देव महाराज, कपिल देव भगवान, वो भी जन्म होते 16 साल के हो गए, बालक बाल्यकाल नहीं है उनके लिए। तो कहने का तात्पर्य ये था कि दिव्य विभूति का जन्म जो है ना इसी तरह दिव्य तरीके से होता है। तो इस तरह चतुर्भुज का जन्म हुआ, जैसे बड़ा हो गया उसके हृदय की भक्ति जो है प्रकट होने लगी, वो श्रीनाथ जी से बात करने लगे जाके। उसके लिए श्रीनाथ जी मूर्ति नहीं थी, मूर्ति हो या प्रत्यक्ष हो वो प्रत्यक्ष बात करते थे। फिर श्रीनाथ जी जब बड़ा हो गया तभी उसके साथ खेलने लगे। तो एक दिन चतुर्भुज दास है ना, बहुत शरारती था, क्योंकि ना भगवान मूर्ति से बाहर निकलते थे और मंदिर के प्रांगण में इधर उधर खेलते थे, भागते थे, दौड़ते थे, शरारते करते थे, और ये उनके पीछे पीछे भागता था और बातें करता था। समझो ध्रुव भाग रहा है और मैं पीछे उनको बोल रहा हूँ, अरे ध्रुव रुक जा, अरे माखन तो खा के जा, अरे रुक जा। और मैं फिर बोल रहा, अरे अभी रुकता नहीं, तो कितनी बार बुलाया, रुको मत, रमेश भागो मत, रुको। तो लोग कहेंगे कि मैं पागल हूँ, अगर ध्रुव उनको नहीं दिख रहा है तो मुझे पागल ही कहेंगे ना। अगर ध्रुव दिख रहा है, दूर भाग रहा है, मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ, मुझे पकड़ने में नहीं आ रहा है, तो समझेंगे सही है। लेकिन यहाँ पर कन्हैया जो है श्रीनाथ जी, वो अदृश्य हैं, वो किसी को दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, खाली ये दिखाई पड़ रहा है चतुर्भुज दास भाग रहा है। तो वैसे ही उसको विक्षिप्त कहते थे, यानी क्या कहते हैं उसका हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं, थोड़ा सा पागल, बावड़ो बालक था वो, बावड़ा बालक। तो वैसे ही प्रसिद्ध था वो कि थोड़ा सा पागल है, दिन भर बड़बड़ते करते, पता नहीं किससे बात करता है, बुद्धिमान है कि कम बुद्धि वाला है कि दिमाग से परेशान है, समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन बालक है तो उसको ही ठीक है, कोई बात नहीं। एक दिन ठाकुर जी आए और उसको बोले, चल तू घोड़ा बन, मुझे घुड़सवारी करने का मन है। तो ये तो क्या, सेवा करने के रेडी रहते हैं। तो तुरंत चार दो घुटने और दो पंजे पे आ गए, है ना। और ठाकुर जी उसके पीठ पर बैठ गए, उनके हाथ में डंडा भी था, उसको मार भी रहे थे, हैट, चलो भागो जोर जोर से। तो वो भाग रहा था बेचारा, वो पूरे मंदिर में वो भगवान से बातें कर रहा है, हाँ, घोड़ा बनकर, और पूरे मंदिर में घूम रहा है, और भगवान उस पर बैठे हुए दिखाई नहीं किसको पड़ रहे हैं। तो फिर बोला, लोग ये पागल लड़का है, मतलब पता नहीं क्या कर रहे हैं, और बात तो ऐसे कर रहा है जैसे कि मानो कोई है। बहुत देर मंदिर के प्रांगण में ठाकुर जी ने उसको उल्टा सुलटा गोल गोल आधा आधा कैसे भी घुमाया, भी इतना देर घुमाने के बाद में, बहुत देर कुछ करने के बाद क्या होता है, हाँ थक जाते हैं, और क्या होता है थकने के बाद, पसीने आते हैं, थकने के बाद में क्या होता है, भूख लगती कि नहीं लगती, भूख लगती है, प्यास लगती है, और क्या होता है, पहला जो पानी पी के आया था उसका क्या होता है, नहीं पानी यहाँ भरता है ना, फिर वेग आता है, तो बेचारा वो चतुर्भुज जो है ना, वो बहुत देर तक घुमा तो उसका ब्लैडर फुल हो गया, मूत्राशय, उसको लघुशंका का वेग आया। तो वो ठाकुर जी को बोल रहा है, अरे रुक जरा, मैं करके आता हूँ, जरा थोड़ा हल्का होके आता हूँ, फिर अच्छी तरह सेवा करूँगा। तो ठाकुर जी बड़े चालाक थे, अभी ये भी लोग सुन रहे हैं, लोगों को भी टेंशन है, अभी ये क्या करेगा, है ना, लोग देख रहे हैं उसका मस्ती देख रहे हैं, लेकिन अभी तक तो ठीक था, बातें ही हो रही थी। अभी तो बोल रहा है कि मुझे जाना है लघु शंका करने के लिए, छोड़ मुझे छोड़। और वो बोल रहे हैं, अरे नहीं क्यों छोड़ रहा है मुझे, तो पता चल रहा है कि किसी से बातें कर रहा है, वो नहीं छोड़ रहा है उसको, शायद कोई भूत प्रेत कोई हॉन्टेड होगा उससे बात कर रहा है ना। तो वो भी देखने लगे उसको, क्या करेगा वो। तो बैठा हुआ जो घुड़सवार था वो बोला, घोड़ा बने हो तो घोड़े की तरह करो, वेरी सिंपल। जो एक रोल ले रहे हो ना, तो रोल चेंज क्यों करते हो बीच में, समझ में आया अभी क्या होता है बीच में, वो भी होता है, बहुत परेशानी होती है फिर। अभी वो इतना बड़ा भर के पानी कैसे चलेगा वो। ठाकुर जी का आदेश हुआ और उसको वेग भी है, असह्य वेग हो रहा है, तो छोड़ना शुरू कर दिया उसने। ठाकुर जी उससे और जोर से घुमाया इधर उधर सब जगह, पूरा मंदिर में प्रांगण में घुमाया। अभी लोगों ने देखा कि ये बालक का ना जो शरारत है वो अति हो गया, अभी दिस इज टू मच, क्योंकि पूरी जगह पर उसने पेशाब किया। और ठाकुर जी उसको हैट कर रहे हैं और वो भाग रहा है बेचारा और छोड़ भी रहा है। तो उसके बाद ना वो लोगों को जो देख रहे थे ना, पुजारी वगैरह सब लोग ना, उनको बहुत क्रोध आया। थोड़ी देर देखा कि वे बालक है क्या करें, लेकिन वो अभी घोड़ा ही बन रहा है, वो जा अगर वेग आया कुछ छूट गया तो रुक के जाएगा ना, उठ के चला जाएगा ना, लेकिन वो उठ ही नहीं रहा है, मतलब वही घोड़ा खड़ा ही कर रहा है वो। तो सबने डंडा लिया और उसको पीटना शुरू कर दिया। तो ठाकुर जी उतर गए जा बाजू में खड़े, तालियां बजा रहे, या बढ़िया हो रहा है, बढ़िया काम हो रहा है। और वो चिल्ला रहा है, मारो मारो मत, अरे तुमने मुझे यहाँ भयका दिया और तुम हंस रहे हो, ताली पीट रहे हो, और मुझे पिटवाया जा रहा है। ऐसा मत करो, तो फिर ताली बजाते रहे। और उस दिन कुम्भन दास को बुलाया बहुत गंभीरता से कि बहुत हो गया अभी। बोला तुम्हारा बालक का हमने सारी शरारतें सहन कर ली, आज जो हुआ है ना उसको हम सहन नहीं करेंगे, आज से ये बालक मंदिर में नहीं आएगा, कभी दिखेगा ना बहुत पीटेंगे उसको। आपको बच्चे को नहीं पिटाना है तो मत भेजो, उस पर नियंत्रण रखो। ठाकुर जी को बड़ा बुरा लगा, कल से मेरा मित्र जो है मंदिर नहीं आएगा। रात के समय शयन का समय आया तो वल्लभाचार्य के पुत्र शयन करने गए तो उन्हें कान में बताया कि आज ना हमारी जिले में मैंने उसको घोड़ा बनाया था और मैंने ही बोला घोड़े की तरह कर, तो मेरे आदेश में उसने किया, उसको इतना कठोर दंड मत देना। वो घर में जाकर रो रहा था, किस लिए रो रहा था बताओ, क्या कारण था उसका रोने का?
क्योंकि वो मंदिर नहीं जा सकता।
क्यों, उसमें क्या बुराई है, घर में बैठो आराम से।
क्योंकि वो घोड़ा बन के शरारती कर रहा था।
वो दुखी था कि उसे ठाकुर जी का दर्शन नहीं होगा, उसको पिटवाया उसका दुख नहीं था, उसको दंड दिया उसका भी दुख नहीं था, लेकिन इसके लिए मुझे अभी ठाकुर जी का दर्शन नहीं होगा इसलिए वो रो रहा था, और ठाकुर जी को बहुत बुरा लग रहा था। तो पुजारी को समझाया, फिर पुजारी ने वापस कुम्भन दास को बुलाया, बोले हम क्षमा चाहते हैं, आपने सुबह हमने बहुत कठोरता से बात की, आपके बालक को आने दो, ऐसा ऐसा ठाकुर जी ने हमको बताया। ऐसी चटपटी लीला ठाकुर जी ने अष्ट सखाओं के साथ की है, कभी प्रत्यक्ष कभी मूर्ति, कभी प्रत्यक्ष कभी मूर्ति। इनकी कहानियाँ बहुत रोचक है। क्यों भगवान श्रीनाथ जी के रूप में आए? क्योंकि जब कृष्ण के रूप में आए थे तो अपने सखाओं के साथ में लीला करके उनका मन तृप्त नहीं हुआ था, और बहुत सारे सखा उनके ऐसे जो उस लीला में नहीं थे वो भी तड़प रहे थे। कहा कि मैं दोबारा आऊँगा तो सारे सखाओं को भी बुलाऊँगा और दिल भर के वापस सखा लीला करूँगा। इसलिए ठाकुर जी कलयुग में दोबारा श्रीनाथ जी के रूप में प्रकट हुए और वही बाल स्वरूप धारण करके उन्होंने ब्रज में बहुत सुंदर सुंदर लीला की। उसी में चैतन्य महाप्रभु आए 1515 में, और वो पहला काम्यवन गए, फिर नंदगांव गए, फिर नंदगांव के भगवान को प्रकट किया उन्होंने, फिर गोवर्धन आए और उधर मेरे ख्याल से कुसुम सरोवर में स्नान किया, वहाँ उनको कृष्ण का दर्शन हुआ कुछ क्षण के लिए, वो बहुत व्याकुल होकर बेहोश होकर गिर गए। चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्ण स्वयं राधा रानी का भाव लेकर आए थे, तो फिर वो इतने व्याकुल हो गए कि न दर्शन नहीं हो रहा, दर्शन नहीं हो रहा। अभी पता चला कि उनके गुरु के गुरु जो माधवेंद्रपुरी थे उन्होंने यहाँ पर ही गोवर्धन के ऊपर गोपाल जी की मूर्ति स्थापन की है जिन्होंने उनको दर्शन दिया था। तो अभी और समस्या हो गई, खुशी भी हुई दुख भी हुआ। खुशी वही कि इधर ही है, दुख यह हो कि हम लोग गोवर्धन पे चढ़ नहीं सकते हैं, तभी क्या करें, बहुत व्याकुल हो गए। तो वहाँ पर श्रीनाथ जी भी व्याकुल हो गए कि मेरे भक्त बनकर आए, भक्त बनकर आए ना, वो भक्त के रूप में तो वो रो रहे हैं, तो उनको भी दुख हुआ। तो श्रीनाथ जी ने स्वयं अफवाह फैलाई कि मुगल आ रहे हैं। तो मुगल आने की अफवाह निकली तो ब्रजवासी पुरोहित थे उन्होंने सीधे गोपाल जी का मूर्ति लिया और वो भाग लेके उधर से उतरे नीचे गोवर्धन से और एक तरफ चले गए। वो तरफ कौन सी तरफ है, ये उत्तर है ना, उत्तर की यहाँ कौन सी होती है दिशा, पश्चिम होती है ये उत्तर, तो ये पश्चिम होती है, पश्चिम की ओर भागे। और वहाँ पर एक दो जगह है, एक उनके और एक सखा थे वहाँ पर, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो सखा जो है ना वो कई दिन से याद कर रहा था, अरे ठाकुर जी मेरे घर पर आकर मेरा प्रसाद पावे, उसकी पुकार भी उनको समझ में आ रही थी, उसकी इच्छा भी पूर्ण करनी थी। तो ठाकुर जी जो पुजारियों के बैलगाड़ी में बैठ कर ले जा रहे थे, पुजारी को बोलते हैं मुझे टोड़ को घनों में ले जाओ, वहाँ एक जगह है टोड़ को घनों, टोड़ को घनों उधर ही है पश्चिम दिशा में, वो गांठोली गांव के पास में है। तो वहाँ पर गए वो, वहाँ पर वो अपना पत्तल वत्तल लगा के ही बैठा था। ठाकुर जी गए वहाँ पर, प्रत्यक्ष रूप में उसका भोजन पाया। कहते चैतन्य महाप्रभु वहीं आए, उनको पता चला कि ठाकुर जी नीचे आ रहे हैं, तो भाग भाग के उनके पीछे पीछे आए और कहते हैं टोड़ के घनों इस जगह पे श्रीनाथ जी भगवान ने चैतन्य महाप्रभु को गले लगाया, आलिंगन दिया। और उसके बाद में उनको वो लेकर आए गांठोली गांव में, तो गाठियावली गांव में क्या हुआ? गाठियावली गांव में श्री कृष्ण के लीला के समय कृष्ण राधा रानी एकांत में बैठे हुए थे। तो एकांत में जब बैठे हुए थे तो ललिता आदि सखी सखियाँ जो पीछे से चुप चुप के आई और दोनों के पल्लू ऐसे बांध दिए, इनका और इनका गांठ मार दिया। बहुत देर एक दूसरे को देखते हुए आनंद लेते हुए फिर जब उनका लीला समाप्त हुई तो जब उठे और जाने लगे तो उनको लगा कि तो हम तो बंधे हुए हैं। जब बंधे हुए देखा तो वो संकोच में आ गए, बहुत शर्मा गए, और सखियाँ छुपी हुई थी वो जोर जोर से हंसने लगी। तो इनको और संकोच हुआ, अरे हम पकड़े गए, हम तो एकांत में आए थे लेकिन एकांत में पकड़े गए। जब वो संकोच में सर झुका के बहुत ही लज्जित हो रहे थे, सभी गोपियों ने रंग भरी पिचकारियाँ निकाली और चारों ओर से उनको धो दिया, भिगा दिया पूरा कंप्लीट नकशिखांत। इतना रंग बरसाया उनके ऊपर पिचकारी से, इतना रंग बरसाया कि पीछे एक विशाल कुंड तैयार हो गया। सब गुलाल से बना हुआ रंग था, गुलाबी, तो गुलाल कुंड बना वहाँ पर। आज भी वो इतना विशाल कुंड है, आपको बोलेंगे कैसे हो सकता है, एक पिचकारी में कितना पानी होता है, 200 ml होगा, कितने हजारों लाखों पिचकारी हमारी होगी। ये गणित करने के लिए लीला सुनने की कोई आवश्यकता नहीं है, तर्क बुद्धि लेकर लीला सुनेंगे ना तो लीला ही आपकी बेकार हो गई। गुरु महाराज कहते हैं कि भगवान की लीला सुनते समय बुद्धि को घर पर रख के आ जाओ, भगवद गीता सुनते समय बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करो, पूरा सिद्धांत समझ लो, लेकिन भागवत शुरू होता है तो बुद्धि को घर पे रखो, फिर ये बेकार के प्रश्न नहीं होंगे, ऐसे कैसे वो बच्चा हो जन्म हुआ तुरंत 8 साल का हो गया, ऐसे कैसे होता है, ये बच्चा पैदा हो गया 3rd स्कंद में वो 16 साल का हो गया और माता को उपदेश किया तो माता बैठ के ऐसे सुन रही है, ऐसे कैसे हो सकता है। और एक बालक ने बोला ये उस खंभे में है तो भगवान उस खंभे से आ गए, ये कैसे हो सकता है, या क्या बात करते हो, 7 साल के बालक ने पार उठाया, इम्पॉसिबल, ये सब बकवास की लीला क्यों सुना रहे हमको आप। इस प्रकार की लीला सुनेंगे तो भागवत जी का जो उद्देश्य है वही आपके लिए असफल हो गया। इसलिए वो बुद्धि जो है ना वो बार बार ऊपर आती ना, डोका वार काटते तिलक हरीश ठेवनिया। तो इस तरह से ये बात कहाँ से निकली, आपका काम है बताना मुझे, लिंक देना। हाँ, ये बात कहाँ से निकली कि पिचकारी से पिचकारी मारकर हौद भर सकता है क्या, हौदों में लाखों लीटर पानी होता है, लेकिन होता है, ठाकुर जी किला में सब कुछ होता है। अरे वो था ना, वो थे ना अगस्त्य मुनि, उन्होंने सारा सागर पी लिया था। अरे क्या बात करते हो, बकवास कर रहे हो आप लोग, है ना, गरुड़ जी भी एक चोच में सागर को पी लेते हैं, सब दिव्य विभूतियाँ हैं, इनकी इनकी स्थिति अस्तित्व उसका महान, उनकी महानता दिव्यता, ये सामान्य बुद्धि से हमारी छोटी बुद्धि से वो भी मोटी, छोटी और मोटी, मोटी अकल मतलब आकार से मोटी नहीं, वो भैंस की अकल को मोटी अकल कहते हैं, तो छोटी और मोटी भी बद्ध मतलब बोथट ब्लंट, ऐसे बुद्धि से कथा नहीं सुननी चाहिए, ठीक है। तो वो गुलाल कुंड है, तो वहाँ से टोड़ को घनो इस जगह से भगवान जीनाथ जी वहाँ आए और वहाँ पर एक मंदिर में छुपा के रखा उनको, और महाप्रभु की इच्छा थी भगवान का दर्शन करें, भगवान दर्शन करके बड़े खुश हो गए, 7 दिन वहाँ पर रखा गया उनको, 7 दिन चैतन्य महाप्रभु ने खूब लाल डलाए उनसे, खूब नाचा, खूब कीर्तन किया, खूब धुआंधार, गांववासियों को भी बड़ा आनंद दिया, श्रीनाथ जी बहुत रिझ गए, और 7 दिन के बाद सबको पता चला ये तो अफवाह थी, कोई नहीं आ रहा है इधर, तो फिर वापस लेने का प्लान हुआ, तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं वो जो जुलूस था ना मिरवणुक उसका नेतृत्व किया और पूरा कीर्तन करते करते जतिपुरा लेके आए, फिर वहाँ नीचे ही खड़े हो गए और ब्रजवासी पुरोहित उनको पहाड़ के ऊपर आके छोड़ के आए। ये सब कहानी क्यों बताई मैंने, क्यों बताई, क्योंकि श्रीनाथ जी ने जन्म लिया और महाप्रभु के साथ भी लीला किया, सबके साथ लीला किया, वल्लभाचार्य के साथ, गोकुलनाथ जी के साथ, उनके पुत्र विट्ठलनाथ जी, चार सखा विट्ठलनाथ जी के शिष्य, चार सखा गोकुलनाथ जी के शिष्य, ऐसे ठाकुर जी की लीला। फिर हम लोग वहाँ बैठे थे ना उस दिन दीप उत्सव में उसके वहाँ गैवर कुंड गैवर वन में, उसके रास्ते में जब हम राइट टर्न लेते हैं अंदर जाने के लिए तो राइट टर्न में तुरंत लेफ्ट में क्या आता है, दोहनी कुंड, वो बताया मैंने कहानी, क्योंकि मैं कई कई कुछ कुछ बताते रहता हूँ, मुझे पता नहीं यहाँ बताया कि नहीं बताया। तो दोहनी कुंड जो है वो इतना बड़ा है और इतना गहरा है। आप में से कितने लोगों ने भक्ति वेदांत अस्पताल मुंबई का देखा है? काफ़ी लोगों ने देखा भी नहीं है। तो भक्ति वेदांत अस्पताल जो है चार विंग वाला सामने वाला, वो पूरा उठा के ना वो कुंड में रहेगा ना, डाल देंगे तो भी बाजू में बहुत जगह बचेगी। उसका शिखर जो है वो भी कुंड के अंदर रहेगा, बाहर नहीं आएगा। इतना बड़ा कुंड है वो, बहुत विशाल। उसके कई घाट है, कई मोटे मोटे घाट है उसके। अभी जल नहीं दिखता उसके अंदर, लेकिन बहुत सारे समय हमने जल देखा है उसके अंदर। बहुत सुंदर कुंड है और वहाँ पर वृषभानु महाराज का, उनकी गायों का दूध निकालने का स्थान है वो। अभी लाखों गाय होती है तो एक बाल्टी में दूध आएगा क्या? एक ही गाय तो इतना 100-100 लीटर दूध दिया करती थी, उसके लिए बड़ा ड्रम चाहिए था उनके लिए। अभी 12 लाख गायों का दूध निकालना है एक समय पे। 12 लाख गोपियाँ उनका दूध निकाल रही है, राधा रानी अपनी गाय का निकाल रही है, कीर्ति मैया अपनी गाय का निकाल रही है, मतलब अपनी मतलब एक गाय का, और वृषभानु महाराज भी गाय का दूध निकाल रहे हैं। सब लोग लगे हुए हैं उसके अंदर। और इतना सारा दूध जो है ना वो इकट्ठा कर करके कुंड में डालना है, बाद में खीर बनाना है तो कुंड से लेना है। कैसा रहेगा ना वो सीन? इस बात में मुझे और एक बात याद आ रही है, नंदगांव में ना मैया भी जमीन के अंदर ऐसे मटके हुआ करते थे। मांट, मांट कहते हैं, एक मांट नाम का गांव है यहाँ पर गोवर्धन के आगे, अपना जन्मा जी के आगे उस तरफ मांट नाम का गांव है। तो मांट नाव के गांव में मटके बनते थे और वो वहाँ से आते थे नंदगांव बरसाने के लिए। तो इन्होंने ऐसा मटका, ऐसे अनेक मटके बनवा लिए थे। मेरे जैसा पूरा आदमी खड़ा रहेगा ना तो भी मेरा सर मटके के ऊपर नहीं आएगा। 6-8 फीट गहरा ऐसा, इधर से इधर तक और गहरा, और उस पे ऊपर जमीन के लेवल में बैठकर मैया मंथन क्या करती थी। उसमें से अभी एक ही मटका बैठ बच गया है, बाकी सब मटके गायब हो गए, लुप्त हो गए। वो मटका उन्होंने एक कमरे में बंद करके रखा है। उसके नीचे उतर के देखा है मैंने कितना गहरा है। तो वो मटके में छाछ मक्खन बनाती थी, फिर वो छाछ एक हाउद में जमा करती थी ऊपर। क्या भाई देखो कितना ऐश्वर्य था, बाप रे। और वो जो हाउद में भरा हुआ छाछ है, जो जो गोपियाँ प्रेम से आती थी वो सबको पिलाती थी, तो सब गोपियाँ ऐसे पीती थी। तो कुछ घी, कुछ बटर मिल्क जो है ना छाछ, वो नीचे गिरेगा ना। ऐसा पूरा परफेक्टली कैसे पी सकते हैं, ग्लास से परफेक्टली पी सकते हैं, लेकिन ये ऐसे पी रहे हैं तो काफ़ी चीज़, बहुत सारा छाछ मुंह में जा रहा है, बहुत सारा ज़मीन पे भी गिर रहा है। और वो जो छाछ है वो ज़मीन पे गिर रहा है, वो पहाड़ से फिसल कर नीचे आता था और नीचे एक कुंड था, छाछ कुंड। नंदगांव में 56 कुंड है, उसमें एक कुंड है छाछ कुंड। बाय द वे अभी नहीं है वो, डोंट गो टू सर्च, ढूंढने को मत जाना, लुप्त हो गया है। लेकिन उसका स्थान है छाछ कुंड का। कितना वैभव था देखो, गोपियाँ भी पेट भर के छाछ पी रही है, वो खोद में भी बहुत सारा छाछ है और नीचे भी एक छाछ कुंड बन रहा है देखो। और रोज में वहाँ डिपॉजिट हो रहा है, गोपियों को पिलाया जा रहा है, रोज इसमें भी जमा हो रहा है, यहाँ से भी नीचे लोग पी रहे हैं। ऊपर से माखन जो उसका हम घी बनाते थे, इतना मक्खन कितना घी बनाएंगे, तो बचा हुआ एक दूसरे को फेंकते थे प्रेम से। आप बोलेंगे ई ये मक्खन का क्या करो भाई, मेरे कपड़े खराब हो गए, ऐसा आप बोलेंगे। ऐसा गोपियाँ नहीं कहती थी, बड़ा आनंद लेती थी। अब मक्खन गिर गया तो ऐसे निकाल के खाने का तो क्या है, आनंद लेने में क्या प्रॉब्लम है, वो धो लेने का बाद में कुर्ता जैकेट जो भी है। अभी मिल रहा है ना मक्खन, इधर गिरा हुआ है ना, निकालो खाओ उसको। इतना सुंदर पद्मगंधा कमल की खुशबू वाला मक्खन मिल रहा है तो जैकेट की क्या सोचते हो, ये सर्फ की बोतल लाओ धो दो उसको, मक्खन अभी मिलेगा ले लो उसको, है ना। हाँ, तो कहने का तात्पर्य यह है कि वहाँ वृषभानु महाराज की गायों का दुग्ध दोहन हुआ करता था, इसलिए कुंड का नाम है दोहनी कुंड। एक बार ऐसे ही, अच्छा मुझे बताओ गाय का दूध दोहन कभी करते हैं? देखता हूँ कितना आपको नॉलेज है। आप लगेगा कि दूध कभी मिलता है वो सबेरे मिलता है दुकान में, पैकेट लेके आना उसको। बच्चों को मिलता पता है दूध कहाँ मिलता है, और दुकान में मिलता है। उसको पता नहीं गाय नाम की चीज होती है उसका दूध निकलता है, कभी देखा ही नहीं। अभी आपको पता है इसलिए मैं बता रहा हूँ कि गाय का दूध होता है ना, दूध गाय का बनता है ना, तो वो दूध निकालते कभी है, दिन भर निकालते रहते, फिर कभी सुबह निकालते हैं ना। देखो पता है उसको, सुबह और शाम को निकालते हैं। सुबह एक बार निकालते हैं, फिर उनको चारण करने के लिए भेजते हैं, गौचारण करने के लिए। फिर ग्वाल बाल भी जाता है, लौट के आता है तो भी चारा खाती है, सब कुछ खाती है, फिर शाम को आके फिर निकालते हैं। तो ऐसे ही एक समय दुग्ध दोहन चल रहा था, राधा रानी अपने गाय का दूध निकाल रही थी, और नियम क्या था कि बछड़ा जो है ना उसको पहले देना है, और वो देने के बाद में तन संतुष्ट हो गया फिर बछड़े को निकालना है, फिर चारों तन से दूध निकालना है। समझ में आया आपको? पहले 2 महीने चारों थन बालक के, 2 महीने हो गए, 2 थन बालक के, 2 आपके, साथ साथ में वो पी रहा है, 2 थन से आप दूध निकाल रहे हैं। अब संतुष्ट हो गया ना बालक, फिर और नहीं पिएगा वो, पेट भर गया तो कैसे पिएगा। तो बीच में कृष्ण आ गए, और कृष्ण ने कहा बड़ा सुंदर दृश्य है ना, गाय का दूध निकाला जा रहा है, मैं निकालो आपके गाय का दूध निकालो। तो राधा रानी को बड़ा अच्छा लगा, रही वहाँ मेरे गाय का दूध कन्हैया निकालेंगे। तो उसने बछड़े को थोड़ा अलग कर लिया, बछड़े को ऐसा पकड़ा, और कृष्ण जो है 2 डोरी लिया उन्होंने, 1 डोरी लिया और पीछे के 2 पैर बांध लिए। क्यों? बीच में मुड़ाया तो टोंग टोंग करेंगे तो दूध निकालने वाला भी टोंग उड़ जाएगा, इतना जत्ता प्रहार खाएगा। और बीच में बांधने वाले पैर से प्रहार करने का प्रयास करेगी तो वो कर ही नहीं पाएगी, उसको बहुत ज़्यादा प्रयास करेगी तो खुद ही गिर जाएगी दोनों पैर के माध्यम से, क्योंकि एक पैर से मारेगी दूसरा पैर भी खींच जाएगा, वो खुद ही गिर जाएगी। इसलिए वो दो पैर बांध देते हैं। इसलिए गौशाला में आपको कभी लंबी डोरी नहीं मिलेगी, 50 आपको छोटी छोटी डोरी मिलेगी। हर एक जगह अपना अपना पर्पज होता है ना, किसी को बांधना होगा आदमी को, चोर को, तो लंबी दूरी लगती है, और गाय का दूध निकालने के लिए छोटी दूरी लगती है। ठीक है, सब कुछ हो गया रेडी। फिर एक बजे आसन लिया, जो बैठते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर बैठते हैं, कभी कभी उकड़ हुए भी बैठते हैं ऐसे, लेकिन अच्छी तरह से आसन लेके बैठ गए। सखा भी बाद में खड़े हैं उसके, और चालू किया च्छ, 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 च्छ। उनका जो स्टाइल था ना, इतना मनमोहक स्टाइल था उनका, इतना मधुर, क्या कहते हैं उसको, सुंदर तरीके से गाय का दोहन कर रहे थे वो। तो वो राधा रानी देखकर बड़ी मोहित हो गई, और फिर क्या हो गई, पहले मग्न हो गई, फिर क्या हो गई, मुग्ध हो गई। मग्न का अर्थ एब्सॉर्ब्ड, पूरी तरह से एकाग्र हो गई, और मुग्ध का मतलब आनंदी भी हो रही है। राधा रानी मग्न और मुग्धा दोनों है, तो वो बड़ी मुग्ध हो गई, और आंखें पलके भी ना मिचाते हुए देख रही है वो सुंदर दृश्य। ठाकुर जी जा राधा रानी के मुंह पर ऐसी पिचकारी मारी, आंख में, मुंह में, सब जगह पर दूध गिर गया, एकदम बोचक्की हो गई वो। ये लीला है उस स्थान की, और बहुत आनंद आया राधा रानी को, और उनको समझ में नहीं आया कि कितने चालाक है कृष्ण, क्या करेंगे, कभी भरोसा नहीं है, कभी विश्वास मत रखना, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग बेचारे भोले भाले देखते रहते हैं कि क्रिश्चन में क्या होगा, कोई भरोसा नहीं है। तो फिर क्या हुआ, एक बार ग्वाल बालों ने सब मिलकर रास्ता रोका गोपियों का सांकरी कोर पे, और कृष्ण ने कहा तुम रोज यहाँ से जाती हो, माखन दही दूध सब कुछ घी लेकर जाती हो, और यहाँ से जाकर हमारे रास्ते से जाकर उधर मथुरा में बेचती हो और धन कमाती हो। मक्खन के और मूल्यवान गौ पदार्थों से भरे हुए मटके तो लेके जाते हो, लेकिन अपना सुंदर शरीर भी लेके जाते हो, उसमें से सुंदर सुंदर गहने, हीरे, मोती भी लेके जाती हो, और हमारे रास्ते से लेकर जाती हो। तो आपको न केवल मक्खन दूध दही का टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन आपकी उंगलियों का, आपके हाथ का, आपके बालों का, आपकी आँखों का, आपके होठों का, आपके पैरों का, आपके वस्त्रों का सब टैक्स देना पड़ेगा। कितनी अजीब बात है ना। तो गोपियां भी कुछ कम नहीं है। राधा रानी बहुत सहमा गई, एकदम बहुत ऐसे संकोच आ गया, बहुत शी बिकेम डिप्रेस्ड। तो ललिता जी तुरंत सामने आई, बोली तुम गलत कह रहे हो, तुम यहाँ पर बाहर से आए हुए व्यक्ति हो, ये राधा रानी का क्षेत्र है, इनके पिताजी का गांव है। बोले नहीं, मैं भी राजपुत्र हूँ, ये नंद महाराज का राज्य है। अरे नंद महाराज की बात मत करो, वो नंद महाराज हमारे महाराज विश्वानु महाराज हमारी राधा रानी के पिताजी अच्छे मित्र थे और वो राज्यहीन थे। तो विश्वानु महाराज राजा हैं पूरे ब्रज के, उनको दोस्त पर बहुत दया आ गई, उन्होंने कुछ हिस्सा उनको दे दिया राजदंड के साथ और सम्माननीय राजपद दे दिया उनको। और तुम उसके पुत्र हुए, तुम राजकुमार हुए, लेकिन तुमको बताएं तुम किराए के राजपुत्र हो। बोले किराए का हुआ तो क्या हो, राजपुत्र तो हो ना, राजदंड तो है ना। तो ऐसे बहुत नोक झोंक होती रही, ये कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ बोल रहे हैं, और हमें आपको डंडा लगा के पिटवाना चाहिए, भगाना चाहिए। मतलब आपको पहले यहाँ से निकलेंगे तो भगाएंगे ना हमको, पहले टैक्स दो। फिर वो राजी हो जाते हैं, कहते हैं कि क्या टैक्स चाहिए आपको। बोले एक मटका दे दो। बोले पूरा मटका देंगे तो एक गोपी तो पूरा बिजनेस के आउट हो जाएगी, उसको एक ही मटका है बेचने के लिए। फिर भी बहुत नोकझोंक हुई, रस्सा रोक के खड़े हैं डंडा लेके, तो गोपियाँ के हाथ में कुछ शस्त्र नहीं है, खाली सर पे मटका है। तो ना ना हा ना हा ना करते करते ठाकुर जी ने अपना डंडा लिया, राधा रानी का मटका फोड़ दिया, वो पूरे मक्खन के साथ में शिला पे गिर गया। शिला पे गिरते ही ठाकुर जी कुछ सखा कुछ रास्ता रोके हुए हैं और कुछ स्वतः नीचे झुक गए और पूरा चाट लिया उसको। ब्रह्मा जी जो पर्वत बने हुए हैं ना, वो इस लीला को देख के पिघल रहे हैं आनंद से। ठाकुर जी के आते ही पिघलते हैं, क्योंकि उनको ठाकुर जी के पैरों को कष्ट नहीं देना है। तो जहाँ जहाँ ठाकुर जी के पैर लगेंगे वहाँ पर वो मक्खन जैसा मुलायम खुद ही हो जाते हैं। अभी लीला चल रही है, मटका फूटता है, तो जहाँ मटका गिरा वो पूरा शिला चिकनी हो गई, नहीं तेलकट हो गई, जैसे भी बोलते हैं आप। तो भगवान ने उसी को चाट चाट के चाट चाट के खाया, तो हथेले के निशान भी आए उसके अंदर। तो गोपियाँ बड़ी परेशान हो गई। अगले दिन फिर वही नाटक हुआ, तो गोपियाँ सोच कर आई थी कि इनको ना सबक सिखाएंगे। तो नेक्स्ट डे आई तो वही जब चालू हो गई, तुम राजा मैं रानी, मैं राजकुमारी तुम राजकुमार, तुम किराए के मैं ओरिजिनल तुम नकली, सब यही बात शुरू हुई। तो बात शुरू होने के उन्होंने पहले ही बोला कि आज आपको माखन सब खिलाएंगे, फ्री में खिलाएंगे, कल एक ही शर्त है हमारी, आप दोना लेके आओ, बदम के पेड़ से दोना लेके आओ। तो फिर उन्होंने छोड़ दिया उनको, सब लोग भागे, बोले मिल रहा है तो झगड़ा क्यों करना है, जाओ ले आओ। सब लोग पेड़ पर चढ़े और उन्होंने दोना निकालने के कार्य में मग्न हो गए। वो भी मग्न होते हैं, तो जब मग्न होके दोना निकाल रहे ना, तो उनकी ये चोटियाँ जो लटक रही है वो सब उन्होंने पेड़ से बांध दी, बहुत लंबी लंबी चोटी होती है, ऐसा कस के बांध दी ना। अभी इतनी दूर है, अभी समझो ये लंबी युद्ध तक मेरी चोटी है समझो, और वो कहीं पेड़ पे ऊपर शाखा में बांध दी है, तो कितना मुश्किल है। आप बोलेंगे इतना क्या आसान है, वो शाखा पे चल के जाने का उधर, वहाँ छोड़ देने का, लेकिन मुझे मत पूछना ऐसा क्यों लगा उनको, ये सब दिव्य लीला है। वो नहीं निकल पाए, अटक गए वो, और अटक के वो चिल्ला रहे कृष्ण बलराम छुड़ा दो मुक्त कर दो। तो आमतौर पर जब वृंदावन में ऐसे होता है ना कि बचा लो बकासुर आ गया, गधा आ गया, बैल आ गया, सांप आ गया, तो कृष्ण बलराम को पुकारते ही वो तुरंत आ जाते थे और राक्षस का मार देते थे। तो उसको लगे इधर भी बुलाएंगे तो उधर आ जाएंगे, वो मुक्त करेंगे हमको। ऊपर से उधर से जब ये चिल्ला रहे हैं तो उधर से कृष्ण बलराम की आ जाती है, बचाओ बचाओ, वही भाव में जिस भाव से ये पुकार रहे हैं वहां से कृष्ण बलराम भी पुकार रहे हैं। तो गुरुजी ने हमारी कथा वहां बता रहे थे, गुरुजी साकरी कोर में खड़े रहकर बता रहे थे, यहाँ पर कथा को रोक दी और पूछा कि कृष्ण बलराम क्यों पुकार रहे हैं। तो सब लोग इसे देखने लगे क्या कारण है इसका, नोबडी न्यू। तो महाराज ने बोला भाई साकरी कोर को क्रॉस करो और चिकसोली गांव में प्रवेश करो जमीन के सर पर, फिर हम दोबारा पूछेंगे, नहीं पता है तो बता देंगे। सब लोग चर्चा करते 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 उतर गए साकरी कोर से और जमीन पर आ गए, पेड़ के नीचे बैठे महाराज ने बोला सारे वृंदावन में कृष्ण स्वामी के रूप में घूम सकते हैं, स्वामी तो राधा रानी है, स्वामी नहीं, लेकिन वहाँ पर थोड़ा बहुत उसका उनका अधिकार चलता है, राज्य भी चलता है, लेकिन बरसाना में प्योर राधा रानी का राज्य है, वहाँ पर किसी खेलते खेलते भी वो राज्य उनका हटता नहीं है, आधिपत्य कंट्रोल। तो वहाँ पर उनके प्रेम के प्रभाव के सामने श्री कृष्ण भगवान असहाय हो जाते हैं, ही इज़ हेल्पलेस। जैसे ग्वाल बाल भी असहाय है, उनके सखा भी सब असहाय है, और उनके सरदार भी कृष्ण बलराम दोनों भी असहाय है, तो भी सब लोग असहाय है, वो चीख चीख के पुकार रहे हैं, बोलो क्या करें, कुछ बताओ, कुछ करो, बताओ, हम करेंगे, कम छोड़ दो छोड़ दो, ऐसा दोबारा नहीं करेंगे, छोड़ दो छोड़ दो। तो उन्हें कहा, ललिता ने कहा, कल तुम्हारा सरदार जो है ना वो गोपी बनकर राधा रानी बनकर आएगा, पूरा अच्छी तरह से लहंगा फरिया दुपट्टा क्या कहते हैं उसको चुनरी अलंकार नथनी कुंडल सब पहन के आएगा, और घर से मैया के पास में से बढ़िया माखन मटके में भर के सर पे धर के लाएगा, और सारे आप सखा लोग अपने घर से मक्खन दही दूध सब लेके आओगे, सखी बनकर आओगे, और हमारी राधा रानी जो है वो कृष्ण बनकर गोप बनकर आएगी, हाथ में डंडा लेकर आएगी, तुम वहाँ से आओगे हम यहाँ से आएगा, आपका रास्ता तोड़ देंगे, और बिना बहस किए राधा रानी डंडा लेकर कृष्ण का मटका फोड़ेगी। तो दूसरे दिन कृष्ण राधा रानी बनकर आए, सारी ग्वाल बाल मंडली जो है गोपी बनकर आई, सबके सर पे सुंदर सुंदर नक्शेदार मटका, उसके अंदर बेस्ट ऑफ दूध बेस्ट ऑफ दही बेस्ट ऑफ माखन, और सखियाँ वहाँ पर ग्वाल बाल धोती वगैरह पहन के आई, अच्छा फेटा बांध के बहुत सुंदर डंडा मोटा सा लेके आई, और राधा रानी को ललिता ने थोड़ा सा राधा रानी थोड़ा संकुचित हो गई, बहुत भोली भाली है ना, ललिता ने हिम्मत दिलाई, जा जा आगे जा तोड़ उसका मटका। तो राधा रानी का राधा रानी ने कृष्ण बने हुए गोपी का मतलब गोपी बने हुए कृष्ण का मटका तोड़ दिया, और सब लोगों ने उसी तरह से खाया जैसे उन्होंने खाया था। तो वो जो लीला है उसका दर्शन दानगढ़ में है, उसमें जो दर्शन है राधा कृष्ण का, वो कृष्ण को भी कंगन पहनाते हैं, मंगलसूत्र पहनाते हैं, कुमकुम लगाते हैं, और कृष्ण के ऊपर चुनरी ओढ़ देते हैं, और ऐसे खड़े हैं, लेकिन उनको आप देखेंगे ध्यान से देखेंगे ना तो हाथ में कंगन है उनके, और समझता है मंगलसूत्र की उनको कुछ बनाया है। तो वो श्याम सुंदर जी जो है वो एक्चुअली राधा रानी है इस तरफ, और यहाँ पर जो राधा रानी है वो कृष्ण है, ये भाव से बनाया है, कुछ पता नहीं होगा तो आपको लगेगा राधा कृष्ण है, लेकिन वो आप गौर से देखेंगे तो पता चलेगा आपको। श्याम सुंदर का मंदिर है वृंदावन में, उसमें भी एक दिन वर्ष में कभी मनोरथ होता है, मनोरथ तो उसमें राधा रानी पेटा वेटा पहनकर गोपी ग्वाल बाल बन जाती है, और कृष्ण के सर पर मटका दिया जाता है और उसको सखी बनाया जाता है, और राधा रानी हाथ में डंडा देते हैं, और कृष्ण ऐसा चुप चुप के जाते हैं। श्याम सुंदर जी का मंदिर है ना वृंदावन का, बहुत अद्भुत मंदिर है वो। क्यों अद्भुत मंदिर है? क्योंकि वहाँ पर इतना सुंदर श्रृंगार होता है, और कार्तिक महीने में अधिक महीने में 30 दिन के मनोरथ होते हैं, और मनोरथ का अर्थ क्या होता है, साल भर की लीला आपको एक महीने में पूरी करनी है, जितने भी उत्सव है हर एक दिन, कभी रासलीला है, कभी जन्म है, कभी कुछ है, कभी नंदोत्सव है, कभी अगासुर को मारा है, कभी कुछ है, तो एक समय लीला ऐसी होगी कि कृष्ण भगवान राधा रानी को खत लिख रहे हैं, तो कृष्ण के हाथ में एक बड़ा सा पेन दिया हुआ है पुराना वाला निब के साथ, ऐसा बड़ा, इतना बड़ा, हाँ, और एक हाथ में नोटबुक है खत लिखने के लिए, राधा रानी देख रहे हैं क्या लिख रहे हैं, बहुत सुंदर दर्शन। रामनवमी में राम और सीता बनते हैं, धनुष धारण करते हैं, ऐसे ही सुंदर मनोरथ होते हैं उसके अंदर। ये हुआ धोनी कुंड का लीला, उसके सामने एक बहुत जीर्ण अवस्था में एक कुंड है, बिहार कुंड, वो जो बिहार कुंड है उसका और एक नाम है माहेश्वरी सर, और एक नाम है उसका गौरी कुंड। तो महेश्वर जी भगवान हमारे शंकर भगवान, सब देवता आते हैं तो वो भी आए, और उनको ये भी पता है कि यहाँ पर सखी बन के आएगा तो ही प्रवेश मिलेगा, तो इस जगह पर आए वो, जहाँ पर अभी कुंड है तभी नहीं था, तो वहाँ जाकर आए और अपना सामान भी लेके आए थे बैग में, समय लेके आया ना, ठंड लगेगा तो स्वेटर सब लेके आया हूँ, तो भी सब स्त्री बनने का सामान सब लेके आए थे, साड़ी चोली घेंगा रेंगा पहरा जो भी होता है चुनरी वनरी सब अलंकार नथनी कुमकुम सब लेके आए थे, और वो खुद स्वयं पहनने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उनको यश नहीं मिल रहा था। कहाँ गांठ मारनी है, कहाँ घुसाना है, कहाँ घुमाना है, कौन सा पल्लू बनाना है, कौन सा छोड़ना है, समझ में नहीं आ रहा था। तो वो देखकर वहाँ पर गौरी जी प्रकट हुए, यानी उनकी पत्नी गौरी। तो गौरी जी आते ही उनका गौर तेज वो सब विभाग में फैल गया, इसलिए उसका नाम गौरी कुंड पड़ा। तो गौरी कुंड में जब ही गौरी कुंड बना नहीं है, लेकिन गौरी आई तो तेज फैल गया। और गौरी जी कहती है, अरे आप पुरुषों को क्या है ये ज्ञान कैसे है कि स्त्री का श्रृंगार कैसे होता है, आपको नहीं हो रहा है, हम आपको श्रृंगार करते हैं। तो गौरी जी ने अपने पति का श्रृंगार किया और पति को गोपी बना दिया। क्या नाम रखा उनका? माहेश्वरी। सुना ना, माहेश्वरी भवन, माहेश्वरी सदन, माहेश्वरी ट्रस्ट। तो माहेश्वरी यानी शंकर भगवान जो गोपी बने हैं। तो पत्नी ने पति को गोपी बनाया माहेश्वरी, इसलिए उसका नाम क्या पड़ा? माहेश्वरी सर। और उन्होंने अपना भी श्रृंगार किया, क्योंकि उनको भी पुकारना था, राजा रानी को, माहेश्वर को भी पुकारना था। दोनों सजदस के सखी बनकर गए और राजा रानी को पुकारने लगे। फिर वो कुंड जो बना वो राधा रानी और कृष्ण का विहार स्थली बनी, इसलिए उसका नाम पड़ा विहार कुंड। बहुत सुंदर जगह है वो, लेकिन थोड़ा सा जीर्ण अवस्था में है। ऐसे ऐसे हमारे ठाकुर जी की लीला स्थलियाँ हैं। अभी भी 3 कथा बच गई है, वो कल बता दूंगा। हरि बोल। कोई प्रश्न है किसी का, बिना तर्क वाला? प्रेम विवल कुंड से डाइवर्ट हो रहा है वो जो बुढ़िया का, हाँ तो क्या हुआ उसका? वो 2 ही बीघा जमीन थी, 1.2 एकर, कुछ बढ़ाने का कुछ स्कोप नहीं था, पीछे पहाड़ था उसके। हमने कहा कि 2 एकड़ में हमारा, 2 बीघा में हमारा 1.2 में काम नहीं होगा, कम से कम 5 एकड़ जगह दिख रहे हैं। अभी लग रहा है वो भी छोटी पड़ेगी हमको आगे जाके, लेकिन 1.2 तो कुछ भी नहीं होता, अस्पताल भी नहीं बनेगा। अभी अस्पताल बन रहा है वो कम से कम 2 एकड़ ज़मीन है, 5 एकड़ में 2 एकड़ में अस्पताल बन रहा है, और वो 2 एकड़ में पीछे भी इतना ही अस्पताल बनाने की जगह है, उसके आगे क्वार्टर्स की जगह है, उसके आगे और भी कुछ बहुत सुंदर बनने वाली है बात। तो ये सब कुछ वहाँ 2 बीघा में मुमकिन नहीं था, इसलिए हमने उनको क्षमा मांगी उनसे, और हमारी कोशिश जारी रही। और कोई प्रश्न है? बोलो जय जय श्री राधे श्याम। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल।